ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ sodhifurniture.com ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਮ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਮੋਰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ 9058747171।
खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से हम आपको रेडियो प्रोग्राम मसीह की आवाज़ वॉइस ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक क्राइस्ट आर किंग लूथरन चर्च मिसिसागा के ताबुन से पेश किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम की बदौलत आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है और ये आपकी जिंदगी के लिए बाबरकत साबित होगा। प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। आज के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस और मुहिब नाम में आप सबको सुबह का सलाम। आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि आप हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक हमारे साथ होते हैं और खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने अपनी बड़ी रहमत से हम सबको नया दिन बख्शा। उसके नाम की तारीफ अब्दुल अबाद हो। मैं जबूर नवीस के साथ मिलकर कहूंगा, क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सराई करना। अहब ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। रेडियो मसीह का होस्ट कमलीन और जनाब पास्टर जेम्स लूक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप रेडियो मसीह की आवाज ट्यून कर चुके होंगे। मसीह की आवाज हर इतवार, जैसा मैंने बताया, कि सुबह 8 से 9 बजे तक AM 770 मीटर बैंड पर क्राइस्ट आवर किंग लूथरन चर्च मिसिसागा की जानब से आपकी खिदमत में नशर किया जाता है। आप इस मसीह प्रोग्राम की बदौलत खुदावंद से बरकत पाते हैं। आज प्रोग्राम को आप आज प्रोग्राम को टेलीफोन के जरिए भी सुन सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 6478724900 और ई आवाज पर सुनने के लिए आप जस्ट लॉग इन टू eawaz.com के जरिए भी टेलीफोन को सुन सकते हैं। और आप इस वक्त प्रोग्राम को लाइव देख भी रहे हैं फेसबुक पर और सुन भी रहे हैं, जस्ट टू लॉग इन टू www.masihkiawaz.ca। और मैं ये भी बताता चलूं कि आप प्रोग्राम को फेसबुक पर सिर्फ पास्टर जेम्स लूक साहब को देखते हैं और मुझे आप टेलीफोन पर मेरी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम दोनों आपके साथ होते हैं और खुदावंद के कलाम को आप तक पहुंचाते हैं और शेयर करते हैं। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में आप ई आवाज के लिए टेलीफोन नंबर हासिल कर सकते हैं, जैसा कि मॉन्ट्रियल, कैलगरी, एडमिंटन, रिजाइना और वैनकूवर के टेलीफोन नंबर आप बड़ी आसानी से ई आवाज की वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत टॉपिक हर एक की जिंदगी में ये टॉपिक होना बहुत ही जरूरी है, जिसके वसीले से हम जाने जाते हैं कि किस तरह के हमारी तरबियत माँ बाप ने की है, किस तरह हम खुदा उनके कलाम को पढ़ते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। टॉपिक का जो नाम है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, शुक्र करना, ये खुदावन को भी पसंद है और हर इंसान को भी पसंद है। तो आज इसी के मुतालिक खुदावन के जिंदा कलाम में से हम सुनेंगे जनाब पादी जेम्स लूक साहब से कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। इससे पेश करके हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं पादी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ओपनिंग प्रेयर में दुआ करें, प्रेयर में मदद करें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। जी जनाब पादी जेम्स लूक साहब,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जहन जो हैं वो आलम बाला पर लगाएं, खुदा से राब्ता कायम करें। खुदावन खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्र करते हैं कि हम तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि तूने हमें हक बख्शा है कि हम तेरे बच्चे कहलाएं। खुदावन खुदा हम शुक्रगुजार हैं एक अच्छे मौसम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया है, और आए खुदावन खुदा शुक्रगुजार हैं कि कोविड-19 की जो ताकत है वो कम होती जा रही है और लोग जो हैं वो अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। खुदावन हम शुक्रगुजार हैं अपने मुल्क कनाडा के लिए, जिसमें हम आराम और चैन की जिंदगी गुजार सकते हैं, और आए खुदावन खुदा हम शुक्रगुजार हैं अपने स्टूडियो के लिए, AM770 के लिए, eawaz.com के लिए, जिसके जरिए से ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंचता है। हम उनके तमाम स्टाफ के लिए बरकत चाहते हैं। आए खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं तमाम सुनने वालों के लिए जो इस वक्त अपने रेडियो और कंप्यूटर ऑन करके तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं तेरे पाकलाम के जरिए से। बख्श दे कि आज ये आज का मैसेज जो है, आज का पैगाम जो है, उनके दिलों तक पहुंच सके और उनकी जिंदगियां तब्दील हो सके। इस वक्त आए खुदावंद हम खास तौर पर हम याद करते हैं अपने उन कमजोर और बीमार भाइयों और बहनों को, खुसूसन उनको जिन्होंने अपने नाम हमें दे रखे हैं कि उनके लिए दुआ की जाए। आए खुदावंद वो इस ईमान से तुझसे दुआ चाहते हैं कि आए खुदावंद तेरा नाम एक शाफी नाम है, तेरे नाम में शिफा पाई जाती है, जब तेरा नाम लिया जाता है तो बीमारियां दूर भाग जाती हैं। खुदावंद हम मिन्नत करते हैं उन तमाम लोगों पर जो बीमार हैं कोविड-19 की वजह से या किसी और वजह से इस दुनिया में बीमार हैं, उनको तो अच्छा करता कि इस दुनिया में चैन और आराम आए, क्योंकि तेरा खुदावन अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने का मकसद यही था कि वो यहां आके आए खुदावन बीमारियां और बहुत सारी तकलीफें जो है उनको दूर कर सके। हम खासतौर पर दुआ करते हैं उस बच्ची के लिए जो लाहौर में कान के लिए, वो अब बेहतर हो रही है। लाहौर में संगम और सायमा के लिए दुआ करते हैं। टेक्सला पाकिस्तान में विक्टर महमूद और फ्रैंक जॉन के लिए दुआ करते हैं। आए खुदावंद हम दुआ करते हैं अपनी बहन जीनत यूसुफ के लिए जो मंट्रियाल में है। हम दुआ करते हैं सलीमा के लिए जो कराची में है, और आए खुदावंद हम दुआ करते हैं उस बच्चे के लिए कैन कामरान के लिए जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। सब लोगों को आए खुदावंद शिफा का हाथ बढ़ा ताकि लोग जो हैं तेरी तारीफ कर सके, और भी जो लोग हैं जिनके दिलों में कोई इस तरह की दुआएं हैं आए खुदावंद उनकी दुआओं को भी सुन, बाकी मांदा प्रोग्राम में हमारे साथ हो, ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के मुकदस नाम में। आमीन।
मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। हलीम ये मेरी रूह खुदावंद की ओर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो आए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। शेर बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। ऐ बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उमंग चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरम ना ठहरेगा। खुदावंद अपने जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। अजीजों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए खूबसूरत ज़बूर सुनते हैं।
मुबारक मुबारक कहाँ गा, मेरा मुँह सदा उस दी उस्तत करेगा, मेरा मुँह सदा उस दी उस्तत करेगा। यहोवा हरदम मुबारक कहाँ गा, यहोवा मेरा मान है सब यहोवा दे उत्ते, मेरा मान है सब यहोवा दे उत्ते। गरीब लोग ए सुन के खुशियां करनगे, गरीब लोग ए सुन के खुशियां करनगे। यहोवा मुबारक कहाँ गा, यहोवा करो नाल मेरे खुदा दी वडियाई, करो नाल ते सब मिल के देओ उस दे नानू उच्चाई, ते सब मिल के देओ उस दे नानू उच्चाई। यहोवा हरदम मुबारक कहाँ गा, यहोवा सुनी जग यहोवान मैं ढूंढे आसी, सुनी जग यहोवान मैं ढूंढे आसी। मेरे सारे खौफां तो दित्ती खलासी, मेरे सारे खौफां तो दित्ती खलासी। यहोवान मुबारक कहाँ गा, यहोवा हरदम। जिना तके अचानन ओना ने पाया, जिना तके अचानन ओना ने पाया। ना ओना दे चेरे ते कुछ खौफ आया, ना ओना दे चेरे ते कुछ खौफ आया। यहोवा हरदम मुबारक कहाँ गा, यहोवा मुबारक कहाँ गा, यहोवा हरदम मुबारक कहाँ गा, यहोवा हरदम मुबारक कहाँ गा। मेरा मुँह सदा उस दी उस्तत करेगा, मेरा मुँह सदा मोहब्बत करेगा जाओ मानुवंदन मुबारक
عزیزو آپ نے خوبصورت گیت سنا. زبور نویس کہتا ہے کہ ہر دم میں یہوہ کو مبارک کہوں گا, اور آج ہم کلام میں بھی دیکھیں گے کہ اس کو مبارک کہنا, اس کی شکر گزاری کرنا, اس کا شکرانہ پیش کرنا کتنا ضروری ہے. تو میں پاسٹر جیمز لوگ سے درخواست کروں گا کہ اب میسج ہے کہ ہم خداوند کی طرف اپنے کان لگائیں, اس کی آواز کو سنیں, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں قوت دیتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کو پورا کریں. جی جناب پاسٹر جیمز لوگ صاحب.
بہت شکریہ. خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس کے نام میں آمین. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج کا میسج جو ہے وہ گریٹیچیوڈ ہے, یا شکر کرنا خدا کا. اور ہم سب جانتے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ ایوری بڈی, آپ میں سے جو بھی سن رہے ہیں, آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ شکر ضرور کرتے ہیں. چاہے آپ کسی بھی خدا کا شکر کریں, کسی کی خدا اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں, بہت سارے خدا کو ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کی پرسیپشن ڈفرنٹ ہے, کیونکہ ایک خدا جو ہے وہ بڑا ظالم خدا ہے, وہ مارنے والا خدا ہے. ایک خدا ہے جو کہ وہ اچھا خدا ہے, اور ایک خدا ہے وہ پیار اور محبت کرنے والا خدا ہے. ہمارا خدا جو ہے, جو مسیحوں کا خدا ہے, وہ پیار اور محبت کرنے والا خدا ہے. اس لیے ہم سب جو ہیں وہ خدا کا شکر کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ آج کی ایک ہمیں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو مقدس لوکا رسول کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ واقعہ جو ہے بڑا غور سے سننے والا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک طرح سے ہماری کہانی ہے, اور میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہماری کہانی ہے. لیکن آپ پہلے یہ واقعہ سن لیجئے, اس کا 17th باب جو ہے پہلی 11 سے لے کے 19 آیت تک ہم سنیں گے. اور میں درخواست کروں گا ایلڈر کورنٹین صاحب سے کہ وہ ہمارے لیے یہ بائبل کا حصہ پڑھیں.
جی لوکا رسول کی انجیل اس کا 17th باب 11th آیت سے 19th آیت تک, جیسا کہ پادری صاحب نے فرمایا. اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا, اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے. انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا, اے یسو, اے صاحب, ہم پر رحم کر. اس نے انہیں دیکھ کر کہا, جاؤ اپنی تائیں کاہن کو دکھاؤ. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا, بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا, اور منہ کے بل یسو کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا, اور وہ سامری تھا. یسو نے جواب میں کہا, کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس نے کہا, اٹھ کر چلا جا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے. خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے, آمین.
آمین. یہاں پہ ہم نے ایک واقعہ سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یروشلم سے آ رہے ہیں اور اپنے گھر کو جا رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ گلیل کے صوبے میں ہے, ناصرت کا ایک شہر ہے جہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں, اور وہ واپس اپنے گھر کو جا رہے ہیں. تو اس وقت وہاں سے گزر کے جا رہے ہیں, ایک گاؤں ہے جو کہ گلیل اور سامریا کے بیچ میں سے ہو کے وہ جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سامریا کا علاقہ جو ہے وہ کہنا چاہیے گلیل کے ساؤتھ میں ہے اور یہودیا کے نارتھ میں ہے. تو آپ اس کو اگر آپ جاگرافی سے واقف ہیں تو انہوں نے یہ آپ کو معلوم ہے کہ کوڑ جو تھا وہ بہت ہی گمبھیر قسم کا مذہب تھا, एक बीमारी, और वो बीमारी जो थी इतनी थी और लोग वो लग सकती थी, और वो लग सकती थी तो इसलिए ये कोढ़ी लोग जो थे इनके लिए शहर से बाहर उन्होंने कॉलोनीज बनाई होती थी। और अगर उन आपने वो मूवीज एक दो क्रिश्चियन मूवीज हैं वो देखी हो तो वहां पे वो दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो कोढ़ी हैं ये बाहर रहते हैं और उनका खाना वगैरह जो आजकल जैसे कोविड 19 की सिचुएशन है और कोविड 19 की वजह से जो लोग बीमार होते हैं उनका खाना वगैरह उनके कमरे के सामने रखा जाता है ताकि वो किसी से मिले नहीं। इसी तरह से ये लोग जो थे किसी से मिलते नहीं तो उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा कि अय साहब हम पर रहम कर। अब वो इसका मतलब है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक सुन रखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो रहम कर सकते हैं, वो बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और आपने कभी इस चीज को आजमाया है? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको आजमा के देखें, खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करें, वो आपकी ना सिर्फ जो फिजिकल डिजीजेस हैं वो बल्कि रूहानी डिजीजेस भी दूर कर सकते हैं क्योंकि वो खुद खुदा हैं। क्योंकि वो खुद खुदा हैं तो खुदा तो सब कुछ कर सकता है ना। तो वो कहते हैं रहम कर, और वो क्या कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जाके उनको पहली बात ये कहते हैं कि अपने तई कायनों को दिखाओ और वो जाते जाते पाक साफ हो गए। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो हैं उनमें इतनी ताकत है कि जब वो कुछ कहते हैं वो खुदा का पाकलाम होता है, और वो जब खुदा का पाकलाम आप पे आपके ऊपर बोला जाता है तो आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, आपकी तकलीफें दूर हो जाती हैं और आप खुदा की नजदीकी में आ जाते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि वो खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, शुक्र करने लगा। शुक्र करना जो है बहुत जरूरी है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि हम जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो मेरा ख्याल है कि पहली बात जो हम उनको सिखाते हैं, पहले तो वो मामा और डैडी या डैडा कहते हैं या अब्बू कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो लफ्ज उनको सिखाया जाता है, उनको कुछ चीज दी जाए तो उनको कहते हैं थैंक यू, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। क्यों? क्योंकि शुक्र करना जो है बहुत जरूरी है, और वो एक मामूली सा फेवर जब भी लोग करते हैं एक दूसरे के साथ तो लोग थैंक यू कहते हैं। अब इसका मैं अपने लिए ये जरूर कह सकूंगा कि मेरे लिए कोई छोटा सा फेवर भी कर दे तो वो मैं कभी सारी जिंदगी भूलता नहीं हूं, मैं भूलता नहीं हूं। और इसीलिए ये शुक्र करना या थैंक यू करना या ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। अब यहां पे ये लोग जो हैं हम यही देखना चाहते हैं कि शुक्र करना जो है एक तरह से इबादत है। आगे चल के देखेंगे किस तरह से खुदा का शुक्र करना जो है वो किस तरह से इबादत में आता है, और इबादत का एक बहुत जरूरी हिस्सा जो है दुआ होती है। हम दुआ क्यों करते हैं? हम दुआ इसलिए नहीं, हाँ कुछ लोग दुआ सिर्फ उस वक्त करते हैं जब उनको जरूरत होती है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि दुआ करने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हम खुदा से बातें करें और खुदा का शुक्र अदा करें। जैसे आपने गौर किया होगा जब मैंने दुआ की थी तो मैंने बहुत सारे शुक्राना अदा किए थे खुदा के, कहा था अच्छे मौसम के लिए, अच्छे मुल्क के लिए, अच्छे लोगों के लिए, ये तमाम के तमाम। हम देखना चाहते हैं एक खत पौलुस रसूल ने लिखा है पहला थसलुनीकियों उसका पांचवां बाब और उसकी 16 से लेकर 18 आयत तक हम देखना चाहते हैं कि वहां पे हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। पौलुस रसूल इसी बात पे जोर देते हैं। जी एल्डर साहब,
हर वक्त खुदावंद में खुश रहो, बिला नागा दुआ करो,
ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے.
یہی مرضی ہے, بلا ناوا دعا کیا کرو. مسیحت میں جو اصلی مسیحت ہے, اصلی مسیحت میں اس وقت کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نام کے مسیحی ہیں, وہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک دفعہ پاکستان میں جب میں پاکستان ایئر فورس میں تھا تو وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا, تو میں وہ واقعہ نہیں بتاؤں گا, لیکن میں جب میرے بچے جو تھے وہ اسکول میں کچھ پرابلم ہوئی تو میں پرنسپل کو جا کے ملا اور پرنسپل سے میں نے کہا کہ دیکھو ہم یہ کام نہیں کرتے جو آپ کہنا چاہتے ہیں, ہم لوگ مسیحی ہیں. تو انہوں نے کہا وائی ڈو یو وانٹ ٹو میک یور چلڈرن ڈفرنٹ. تو میں نے پتا ان کو کیا جواب دیا تھا, میں نے کہا دے آر ڈفرنٹ بیکاز مسیحی لوگ جو ہیں, مسیحی لوگ, سینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے سیٹ اپارٹ, دوسروں سے علیحدہ اس کا مطلب. تو یہ بات جو ہے, یہ بلا ناوا دعا جو ہے 24/7 ہمیں کرنا ہے, شکر خدا کا 24 کرنا ہے, 24/7 کرنا ہے. اسی لیے یہ جو کوڑی ہیں ان میں سے 10 تو ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن ایک واپس آیا. ایک شخص ہے چارلز براؤن, اس نے کچھ سجیشن دیے ہیں کہ وہ جو تھے وہ کیوں واپس نہ, 9 جو تھے وہ کیوں واپس نہیں آئے. پہلی بات وہ کہتا ہے کہ وہ جو تھے انہوں نے سوچا کہ جب کوڑ صحیح ہو جائے گا تو ہم واپس چلے جائیں گے. دوسری بات انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ جب ٹھیک ہو جائیں گے کتنی دیر تک ہم ٹھیک رہیں گے. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بعد میں آ جائیں گے. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جب کائنوں کو دکھا لیں گے اس کے بعد آئیں گے, اور اس کے بعد وہ بھول گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب جا کے دکھایا ہے, جب ان کا کوڑ صحیح ہو گیا تو انہوں نے کاہنوں کی تعریف کی, خدا کی تعریف نہیں کی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اوہ خدا یسوع مسیح نے تو کچھ کیا ہی نہیں, وہ میں تو پہلے ہی ٹھیک ہو رہا تھا. اس طرح کی یہ باتیں جو ہیں, یہ باتیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں, روز مرہ زندگیوں میں یہ باتیں آتی ہیں اور ہم جو ہیں اس کو اسی طرح سے ٹال دیتے ہیں, خدا کا شکر ادا کرنا نہیں چاہتے یا نہیں کرتے, یا پھر ہم وی بیکم ٹو لیٹ. اور یہ جو ہے یہ اتنی ہاربل ڈیزیز ہے, یہ ہاربل ڈیزیز اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ وہ جب وہ کہتا ہے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ دکھاؤ, تو ایک بائبل مقدس کی کتاب ہے جس کا نام احبار ہے یا لیویٹکس ہے, علی صاحب 14 باب اس کا اور اس کی پہلی 4 آیات ذرا پڑھیے گا. لیویٹکس جو ہے احبار کی کتاب, اس کا 14 باب اور پہلی 4 آیات ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے کاہن لوگ جو تھے وہ ایگزامن کرتے تھے.
یہ بھائی صاحب جو آپ نے بڑی اچھی بات کہی, جلدی بیماریوں کے بعد پاک ٹھہرایا جانا, اس کے متعلق جیسے آپ نے فرمایا کہ کاہن کیسے پاک کرتے تھے. خداوند کا کلام فرماتا ہے, پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک ٹھہرایا جائے یہ شرح ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں, اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے اور کاہن خود کوڑی کو ملاقات کرے, اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک کرا دیا جانے کو ہے اس کے لیے وہ زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لیں.
جی تھینک یو. اب یہاں پہ ایک پروسیجر دیا گیا تھا کہ سردار جو کاہن تھے وہ کس طرح سے ان کوڑیوں کو وہ ایگزامن کرتے تھے, اور اس کے بعد ان کو, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کاہن لوگ جو تھے وہ ایکچولی ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے, اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے, اور جو لوگ کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ ان کو تمام یہ باتیں جو آتی تھیں اس لیے وہ ان کے پاس جایا جاتا تھا اور وہ ڈکلیئر کرتے تھے کہ آیا یہ کوڑی صاف پاک صاف ہو گیا کہ نہیں, کاہن کے پاس جاتے تھے. یہ غور طرف بات ہے, کاہن کے پاس جاتے تھے. लेकिन सबसे बड़ा काहिन जो है वो कौन है? वो तो खुदा खुद है, और खुदा खुद है, और वो दसवां कोड़ी जो है उसने ये जाना है कि मैं उन काहिनों के पास क्यों जाऊं, मैं सरदार काहिन के पास जाऊं जिसने मुझे अच्छा किया है। और वो सरदार काहिन के जो अल्फाज हैं वही जो उसके मुंह से निकलते हैं वही कलाम खुदा है, और वो कलाम खुदा जो है उसको वो सही कर देता है। और वो कलाम खुदा में इतनी पावर है कि अगर मैं और आप भी वही बात करें जो कलाम खुदा में लिखी हुई है तो आप देखेंगे कि बीमारियां दूर हो जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाते हैं। याकूब रसूल के खत में ये लिखा हुआ है कि जब कोई बीमार हो तो चंद बुजुर्ग जो हैं एल्डर्स, इसका मतलब है कि वो जाएं उसके लिए दुआ करें, उस पर कलाम पढ़ें और उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। और आप देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो शिफा पाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि किस तरह से ईमान जो है वो कितना जरूरी होता है शिफा पाने में। वो एक जो है वो उसको ईमान है, उसके पास ईमान है, वो वापस किया है खुदावंद यीशु मसीह के पांव में गिरा है और उसने बहुत खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और तमजीद की है। उन्होंने क्या किया है? बहुत तमजीद की है। एक और वाकया है जो हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, वो पहला सलातीन जो है पांचवां बाब है और उसकी पहली 14 आयात मैं पढ़ूंगा नहीं, या मैं कहूंगा नहीं एल्डर साहब से कि वो पढ़े क्योंकि वो लंबा सा एक नैरेटिव है। वहां पे भी एक कोड़ी है, नामान उसका नाम है, ही इज अ वेरी सीनियर ऑफिसर और गालिबन वो हबशा से है, और वो आता है एलिया के पास और उसको कहता है कि उससे मिलना चाहता है। तो वो चाहता है कि उसको मालूम है कि एलिया नबी जो है वो यही खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो हैं जब बोलते हैं तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। और जब वो ये उसको जाके मैसेज करता है तो एलिया नबी को मालूम है कि इसके दिमाग में क्या है, तो एलिया नबी क्या कहते हैं? एलिया नबी उसको मिलते भी नहीं हैं, अपने अपने शागिर्द से अलीशा से कहते हैं कि तू उसको कह के वो फलाने फलाने हमारा जो रिवर है उसमें जाके डुबकी लगाए तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये बात जो है नमान को पसंद नहीं आती है, और नमान क्या करता है? नमान कहता है यार मेरे मुल्क में तो बहुत बड़े बड़े नहरें और दरिया हैं, मैं वहां पे जाके कर लूंगा। और जब वो ये करता है तो वो उसको कहा जाता है कि देख अगर वो ये कहता कि इससे भी मुश्किल करता तो तू ना करता। उसने कहा है कि तू इस दरिया में डुबकी लगा, तो वो उस दरिया में डुबकी लगाता है, वो पाक साफ हो जाता है। मेरे कहने का मकसद यह है जो खुदा का कलाम है, जो खुदा कहता है, वो हमें करना चाहिए और हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये जो एक कोड़ी है। अब कोड़ की बात जो हो रही है उस पर मैं जाऊंगा, जब मैंने शुरू में कहा था कि हम भी सारे कोड़ी हैं क्योंकि हम एक गुना आलूदा वर्ल्ड में रहते हैं, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इतना घिनौना गुनाह है कि आज गुनाह की तमीज भी लोगों को नहीं रही है। गो के हमें हमारे जिस्म पे उस तरह की वो एक्सप्रेशन नहीं आते, वो चीजें हमें शायद फ्लूए नहीं होते, लेकिन हमारे दिल पे फ्लूए होते हैं। वो गुनाह जो है हमसे सरजद हो जाता है, हम इरादा तो नेकी का करते हैं लेकिन वो हमसे गुनाह हो जाता है। पौलुस रसूल भी यही बात कहते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम इस जिस्म में हैं, हम गुनाह करते रहते हैं। इसलिए हमें खुदा के पास जाने की बहुत जरूरत है, रोजाना जाने की जरूरत है, हर वक्त जाने की जरूरत है, 24/7 जाने की जरूरत है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुदा के पास जाएं, गिड़गड़ा के उससे दुआ करें कि उसको कहें कि कुछ जो भी शख्स जो है, जो भी शख्स चाहे वो औरत है, चाहे आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो आपका कोड़, वो गुनाहों का कोड़ जो है वो दूर हो जाता है। और यही बात है, एक मेरे दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी शख्सियत है और कैनेडा की, आप उनको जानते हैं, मैं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, उनको कैंसर हो गया और वो सेंट माइक हॉस्पिटल में थे। तो उनको मैंने टेक्स्ट किया, वो मरने वाले थे, उनको कैंसर हो चुका था और उन्होंने, जब मुझे पता चला तो मैंने उनको एक टेक्स्ट किया था, उनको कहा था प्रे इन द नेम ऑफ जीसस एंड यू विल बी हील्ड। तो उन्होंने मुझे पता क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा यस आई विल। उसके बाद मैं उनके पास हॉस्पिटल में गया, उनके साथ दुआ की, उनकी वाइफ उनके पास बैठी हुई रो रही थी और मैंने उनको कहा मेरे भाई मेरे फ्रेंड आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। और उनका ईमान था कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, आज वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं मुझे कॉल करें, मैं आपको उनसे मुलाकात करवा दूंगा, वो खुद कहेंगे। वो कह रहे थे वो क्रिश्चियन नहीं हैं, वो कह रहे थे मैं आपके चर्च आना चाहता हूं और सारी कलीसिया को मैं, क्योंकि हम सब एज अ कलीसिया उनके लिए दुआ कर रहे थे और वो आज बिल्कुल तंदुरुस्त है। मेरे भाई और मेरी बहन, ये क्यों होता है? ये दसवां जो कोड़ी है खुदावंद यीशु मसीह के पांव में गिरा है और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ये ईमान जो है ये बहुत जरूरी है, अगर आपके पास वो ईमान नहीं है तो आज मौका है कि वो ईमान आप रखें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी जब आप जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना जब आप जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की मौत, सलीपी मौत जब आप अपने आप पे लागू करते हैं, इसको पर्सनल बनाते हैं, हम उसी कोड़ी की तरह हैं, हम उसी कोड़ी की तरह हों, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हम सारे कोड़ी हैं, हम गुनाह के कोड़ी हैं, गुनाह के बोझ में हम दबे हुए हैं, इसलिए वो ईमान जो है हमारे में आना जरूरी है। खुदा यीशु मसीह जो खुदा के बेटे हैं, जो खुदा खुद हैं, वो इस दुनिया में इसीलिए आए हैं ताकि वो इस कोड को दूर करें। जब आप अपने घुटनों पे जाते हैं और आप दुआ करते हैं तो वही कोड दूर हो जाता है। ये नहीं कि जाके अपने कहनों को दिखाना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सरदार कहन के सामने सरनगू होते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, उसको कहते हैं, गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं कि इस गुनाहों के कोड़ को मुझसे दूर कर दे। मेरे भाई और मेरी बहन गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब वो कोड़ दूर हो जाता है तो आपको हमेशा की जिंदगी हासिल हो जाती है। और वो हमेशा की जिंदगी क्या है? वो खुदा के साथ, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमान पे, उन मुकामों में जो खूबसूरत मुकाम है वहां पे एक आरामदेह जिंदगी आपको मिलती है, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। क्या आप नहीं चाहते ऐसा हो? क्योंकि अगर आप ऐसे ये नहीं चाहते तो दूसरा रास्ता जो है वो अच्छा नहीं है। वो नौ के नौ जो थे वो फिजिकली तो हील हो गए, लेकिन उन्होंने खुदा का शुक्र नहीं अदा किया। एक जो है वो सिर्फ बचा है और यही परसेंटेज आज इस दुनिया में है। 90% लोग जो हैं वो खुदा को कुछ नहीं समझते, उनकी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, शायद उनकी खुदा उनको बरकत भी देता है, खुदा की बारिश जो हर एक पे गिरती है, लेकिन वो एहसास उनको नहीं है। सिर्फ 10% लोग हैं, उससे भी कम हैं, जो कि इस दसवें कोड़ी की तरह शुक्रगुजारी करते हैं। और ये शुक्रगुजारी करना जो है ये बहुत बहुत जरूरी है। खुदावंद आपको बहुत बरकत। आमीन
आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए जो आपने हमें हम तक पहुंचाया, क्योंकि जैसा आपने फरमाया कि जो खुदावंद की आवाज है वो खुदावंद का कलाम है। द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ गॉड, लॉ ऑफ गॉड, सोर्ड ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द बुक ऑफ गॉड। जैसा कि आपने कलाम में सुना कि उस नबी ने कहा कि जा तू उस दरिया में गोते लगा, 7 दफा उसने गोते लगाए और वो पाक और साफ हो गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और वो कोड़ी पाक और साफ हो गई। जैसा पाई साहब ने बताया कि दुआ में बड़ी ताकत है जब हम शुक्र के साथ उसके पास आते हैं,
اور دعا کرتے ہیں. آج ہم نے دیکھا, میں ایک دو سوال پائی صاحب سے بعد میں پوچھوں گا, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خوبصورت گیت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں واپس آتے ہیں.
یسو نام زندگی کا جام, زندگی کا دے وہی آرام. یسو نام زندگی کا جام,
رضو آپ نے خوبصورت گیت سنا کہ یسو کے نام میں زندگی ہے, یسو کے نام میں شفا ہے, یسو کے نام سے بند دروازے کھل جاتے ہیں, مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یسو کے نام میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ کبھی چھوڑتا نہیں. ہم شکر کرتے ہیں خدا ان کے زندہ کلام کے لیے جو بائبل کے ذریعے, اپنے کلام کے ذریعے ہم سے باتیں کرتا ہے, گیتوں کے ذریعے ہم سے باتیں کرتا ہے. جب ہم اپنی عملی زندگی سے, ہماری زندگی سے خدا دوسروں پر بڑا اثر ڈالتا ہے. عزیز, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر اتوار صبح 8 سے 9 بجے تک ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور خداوند کے زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں. میرا نام ایلڈر قمر دین ہے اور جناب پاسٹر جیمز لوک, ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ پروگرام آپ کرائسٹ آور کنگ لوتھرن چرچ مسیساگا کی جانب سے AM 770 بینڈ پر ہر اتوار کو نشر کیا جاتا ہے اور آپ سنتے ہیں اور خداوند کے کلام سے برکت پاتے ہیں. آپ اس پروگرام کو ٹیلی فون کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر ہے 6478724900. اینڈ ویب سائٹ کے اوپر آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. جسٹ لاگ ان ٹو eawaz.com کے ذریعے بھی آپ پروگرام کو دیکھ اور سن سکتے ہیں, اور فیس بک کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں. جسٹ رائٹ ناؤ آئی تھنک یو آر واچنگ دا فیس بک. آپ دیکھ رہے ہیں کرائسٹ آور کنگ, آور چرچ, ہمارے چرچ کی تصویر آ رہی ہے, اور اسی طرح بھائی صاحب آگے سلائڈ کو چلاتے جاتے ہیں. اس کے لیے جسٹ لاگ ان ٹو www.masikiawaz.ca www.masikiawaz.ca, اور کینیڈا کے دوسرے شہروں کے ٹیلی فون نمبر آپ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. eawaz.com کے ذریعے آپ ان تمام شہروں کے ٹیلی فون نمبر حاصل کرتے ہیں. تمام سے مراد جن کے میں ہم نام دیتے ہیں, جیسا منٹریال, کیلگری, ایڈمنٹن, ریجائنا اور وینکوور کے ٹیلی فون آپ حاصل کر سکتے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹیلی فون کا نمبر, چرچ کا نمبر 9058228931 ہے, اور آج کے میسج کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو ذہن میں, آئی ایم شیور لاٹ آف پیپل دے ہیو اے کوشچن ان دیئر ہارٹ اینڈ مائنڈ, اینڈ پلیز کال پاسٹر جیمز لوک. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 416-454-2581, اور اگر ریڈیو پروگرام کے متعلق کوئی رابطہ قائم کرنا چاہیں, چرچ کے متعلق کوئی رابطہ قائم کرنا چاہیں, اگر آپ کو بائبل کی ضرورت ہے, کلام مقدس کی, تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. میرا ٹیلی فون نمبر ہے 6473390397 6473390397, اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم دونوں کے جو ٹیلی فون نمبر ہیں, اگر آپ نے میسج چھوڑنا ہے, اگر ہم نہیں اٹھا سکتے کسی وجہ سے بزی ہوتے ہیں یا ڈرائیو کرتے ہوں, تو برائے مہربانی آپ میسج چھوڑیں, ہم آپ کو ارلی فرصت میں آپ سے رابطہ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے لیے. اور فائز صاحب نے آج جو میسج دیا ہے, شکر گزاری کے حوالے سے میسج دیا ہے کہ ہمیں ہر وقت شکر گزاری کرنی چاہیے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے کلام میں سنا, لیکن بائبل مقدس بھی یہ بتاتی ہے کہ آسمان پر بھی شکر گزاری ہوتی ہے. آسمان پر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, نہ حوالہ جات دوں گا. بندگی میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں, دعا کے ساتھ ہم شکر گزاری کرتے ہیں, گاتے ہوئے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چرچز میں یا دوسری عبادت گاہوں میں لوگ خداوند کی حمد و تعریف کرتے ہیں گا کر. خدا کی شفقت کے لیے ہم شکر کرتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر نجات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں نجات دی, ہمیشہ کی زندگی دی, اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. دعا کے سننے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں, دیگر برکتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں, اور جو آخر میں کہوں گا, کھانے پینے کے لیے, سب باتوں کے لیے شکر گزاری. اور انسان کا شکر گزار ہونا بھی بہت ضروری ہے. جب جیسا پائی صاحب نے کہا کہ جو 9 کوڑی تھے وہ تو نہیں آئے شکر گزاری کرنے کے لیے, اور ایک واپس آیا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی اپنوں کا شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ہی زیادہ سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہیں اگر ان کی شکر گزاری نہ کی جائے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی چھوٹا سا کام کریں یا فیور کریں آپ کی, تو شکر گزاری ضرور کریں, کیونکہ یہ شکر گزاری دل سے ہوتی ہے. تو آج ہم نے شکر گزاری کے متعلق ہم نے یہ خداوند کے کلام سے سنا. میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا تھا, پائی صاحب آپ نے میسج میں بھی وہ کہہ دیا, لیکن وائی ڈن دا ادر 9 ریٹرن بیک ٹو گیو تھینکس ٹو جیزس, وہ 9 جو تھے وہ کیوں نہیں آئے؟ آپ نے کلام میں بتایا, لیکن تھوڑا سا پھر واضح کر دیں کہ उसमें से सिर्फ एक आया और नौ क्यों नहीं आए। आज भी वो दुनिया में ऐसे लोग हैं हम जो शुक्रगुजारी 90 तो नहीं आते लेकिन 10 आ जाते हैं, इसके मतलब वो क्यों नहीं आए, इसके मतलब थोड़ा सा बताएं प्लीज।
वो नौ जो हैं वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो एक बात को नहीं समझते
जी।
और वो बात आपने एक लफ्ज कहा था निजात,
निजात हाँ जी।
निजात जो है वो क्या है? निजात जो है वो खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करना है, हमेशा की जिंदगी बसर करना है, उसको निजात कहा जाता है। और जब ये नौ के नौ जो हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि नौ के नौ जो हैं वो फिजिकली तो तंदुरुस्त हो गए हैं
जी,
लेकिन वो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को नहीं जानते। वो उनका ईमान जो है वो सिर्फ शायद कहनों में है, शायद फिजिकल में है कि हाँ हम ठीक हो गए जी, दैट्स ऑल। लेकिन वो जो एक है वो जब वापस जाता है तो यही बात हमें देखना है कि वो जो है वो निजात हासिल करता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब उसको कहते हैं कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तो वो खुदा की तमजीद करता है, खुदा का शुक्र अदा करता है, खुदा की तारीफ करता है।
और तो उसने खुदा यीशु मसीह पर ईमान
लाया। नौ जो थे वो ये बात नहीं समझ पाते थे
जी। नौ इसका मतलब है पाई साहब के उन्होंने सोचा कि ये मुफ्त में मिल रही है, इसका कोई फायदा ही नहीं है, तो हम तो कायनों को जाके दिखाते हैं, शायद कायनों की उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वो भूल गए कि हमारा जो सरदार कायन है खुदावंद यीशु मसीह बाप के दाने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है, और सबसे बड़ा सरदार कायन वही है, और उसका पहले शुक्रगुजारी करनी और उसके बाद आदमियों की भी शुक्रगुजारी। और ये पाई साहब हम अक्सर नहीं करते, व्हाई डोंट वी डू दैट मोर ऑफ्टन अपनी जिंदगी में?
क्योंकि हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे दिल में शक होता है, हमारे दिल में ईमान नहीं होता। ईमान दो तरह का होता है, एक ईमान वो होता है कि हाँ हाँ ये शख्स जो है मेरी तकलीफ दूर कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह को आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम लिया जाता है तो बीमारियां दूर हो जाती हैं, और बहुत सारे टेलीविजनिस्ट भी इस तरह करते हैं, लोग धड़ाधड़ वहां पे अपने बीमारों को लेके जाते हैं, लेकिन कुछ बीमार जो हैं वो सही नहीं होते, कुछ बीमार सही हो जाते हैं।
ईमान की वजह से
कोई सिचुएशन है क्योंकि उनके ईमान की कमजोरी है। जब ईमान आपका कमजोर होगा तो आप शिफा नहीं पा सकते। और यहाँ पे ये शख्स जो है इसका ईमान इतना मजबूत है कि वो वापस गया। और हम जो हैं वो हम क्या कहना चाहिए, एक ऐसे दिल के साथ जाते हैं कि यार शायद हो जाए कुछ, शायद होने वाली बात नहीं है,
हमें शक लेके जाते हैं। पाई साहब शक लेके जाते हैं, एतबार नहीं करते खुदावंद यीशु मसीह पे, एतबार नहीं करते, ईमान नहीं।
हाँ जी। और उसको ये जब इतना मजबूत ईमान लेके आप जाते हैं तो उसको सेविंग फेथ कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा ईमान की दो किस्में हैं, एक ईमान वो है जो हम कहते हैं हाँ हो जाएगा सब कुछ ठीक है, यू नो यू जस्ट बिलीव, लेकिन दूसरा ईमान ये है कि आप वो सेविंग फेथ है, और वो सेविंग फेथ आपको बचाता है। और वो किससे बचाता है? वो सिर्फ ये नहीं कि आपको गुनाहों के कोड़ से बचाता है, और वो बहुत जरूरी है हमें आज जो हम सीखना चाहते हैं, और आज जो हमारे दिलों में ये बात डल जानी चाहिए कि ये गुनाहों का कोड़ जो है हमसे चिपटा हुआ है, और उसको एक ही शख्स दूर कर सकता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक शख्सियत है और उसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि वो खुद खुदा है, वो खुद खुदा है। जब खुदा बोलता है तो वही खुदा का पाकलाम होता है, और वही चीज जो है वो आपको उन बीमारियों से शिफा देती है, और इस 10 कोड़ी के साथ यही हुआ है।
और पाई साहब खुदावंद का कलाम जो है खुदा आदमियों के जरिए भी बोलता है, बंदों के जरिए, औरतों के जरिए भी बोलता है, बच्चों के जरिए भी बोलता है, क्योंकि उसकी आवाज जो है उसे हमें पहचाननी है, क्योंकि उसकी आवाज में कुदरत है, जिस तरह आपने बताया। और बाइबल मुकद्दस में बड़े हवाला जात हैं जो कि खुदावंद अपने पैगंबरों के जरिए हमें कलाम देता है, और अगर हम सुनते ही नहीं है, माँ बाप की नहीं सुनते, अपने बड़ों की नहीं सुनते, ये कई दफा खुदा की आवाज होती है, कई दफा आपका एक्सपीरियंस होता है, تو آپ سنتے ہیں تو پھر کیا آپ کو فائدہ ہوتا ہے, آپ اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ خداوند کی نزدیکی حاصل کر لیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ کی زندگی, ابدی زندگی, نجات حاصل کر لیتے ہیں. کیونکہ بائبل جو ہے وہ ہماری راہ کے لیے روشنی, قدموں کے لیے چراغ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. تو پائی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے. ہر آدمی کی, بیوی بچوں کی, ہسبینڈ کی, رشتہ داروں کی, کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے یا فیور دے تو ہمیں شکر گزاری دل سے کرنی ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم دل سے کریں گے, دلوں تو خدا جانتا ہے, لیکن جب ہم اپنے زبان سے کسی انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو خدا بھی خوش ہوتا ہے اور انسان بھی خوش ہوتا ہے, پھر آپ آدمیوں کی اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں.
ہاں, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات آج میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کا شکر ادا کریں.
جی,
خدا کا شکر اس طرح نہیں ادا کرنا جس طرح وہ نو نے کیا تھا, خدا کا شکر اس طرح ادا کرنا ہے جس طرح وہ دسویں نے کیا تھا کہ وہ واپس کیا ہے, وہ خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گرا ہے اور اس نے تمجید کی ہے, اس نے شکر ادا کیا ہے, وہ شکرانہ اس نے دیا ہے اور اس نے خدا کا
شکر کیا. یہ سب سے بڑی بات ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ زبور میں کہا کہ میں شکر گزاری پیش کرتا ہوں. گھنٹی بج چکی ہے پائی صاحب, خداوند نے چاہا تو اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے ٹیلی فون کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے. تو آپ اپنا خیال رکھیں, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.
موجز سامعین, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام مسیح کی آواز کو مکمل طور پر سنا. امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی. آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں. اگلے اتوار کو صبح 8 سے 9 بجے تک ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا نگہبان. مسیح یسوع کا فضل آپ سب پر ہو. آمین.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ. ਜੇ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ 90% ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਮੇਲ ਕਰੋ. ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਲਵੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.ontario.ca/colon-cancer ਚੈੱਕ ਤੇ ਜਾਓ. ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ.
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਅਰੂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ. 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ 416-910-8750, 416-910-8750. ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ newsom.org, ਇਟ ਇਜ਼ newsom.org.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ. ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ. ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ. ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ. ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ. ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ. 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com. QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ.
ڈائیورس یا کسٹڈی دی لڑائی زندگی دی سب تو اوکھی لڑائی ہوندی ہے, کیونکہ تسی اس شخص نال لڑ رہے ہوندے ہو جس نال تہاڈا گھر پریوار تے تہاڈے بچے سانجے نے. اس وقت کئی سوال اٹھتے نے کہ پراپرٹی کس کول جائے گی, کسٹڈی کس نو ملے گی, تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کول رہن گے.
ایس اینڈ ایس لوئرز کو انہاں سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لئی لڑن واسطے لیاقت ہے. اپنے حق جانن لئی یا صلاح لین لئی اج ہی ایس اینڈ ایس لوئرز نو کال کرو 416-655-2000.
کووڈ 19 کر کے سارا کام آن لائن ہو گیا, گروسری آن لائن ہو گئی, ٹیوشن آن لائن ہو گئی, اور تا ہور کل مینوں ریا نے دسیا کہ سوڈی فرنیچر والے بھی ہن آن لائن فرنیچر سیل کر رہے ہیں.
بالکل ٹھیک سنیا,